ओम शांति। आज हम कल की मुरली पर गुह्य चर्चा करना चाहते हैं। याद है किसी को कल की अव्यक्त मुरली? प्रसिद्ध कौन होंगे? यही थी सब ड्रामा अनुसार नहीं, जो संकल्प और बोल की सिद्धि प्राप्त करेंगे वो प्रसिद्ध होंगे। और हमारे प्रसिद्ध होने से क्या होगा? बाबा प्रसिद्ध होगा। हम प्रसिद्ध होके क्या करेंगे? जिसको करना है फिर उसको करेंगे। तो इस पर बाबा ने बहुत अच्छी दो बातें बताई। संकल्प और बोल किन के सिद्ध होंगे? ये बात किसी को याद हो? वो ये बात है, ये पहले भी कुछ बाबा ने कहा इसके लिए, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और कल कहा, जो लंबा काल एक संकल्प में स्थित होंगे उन्हें संकल्पों की सिद्धि मिल जाएगी। दूसरा कहा, जिनके संकल्प और बोल सत्य और समर्थ होंगे उन्हें दोनों की सिद्धि मिल जाएगी। चाहते हैं आप? कौन कौन चाहते हैं सिद्धि? नहीं, सब नहीं, बस बहुत हो गए, इतने ही काफी हैं। सबके बस का ये काम नहीं है, इतने ही बहुत हैं। एक को भी मिल जाए तो कमाल हो जाता है। एक साईं बाबा के पास थी, अब तक काम कर रही है मृत्यु के बाद भी। उसके फोटो से, उसके चित्रों से, घरों में उसके चित्रों से काम हो जाता है लोगों का। पहले बाबा ने कहा है, जिनके संकल्प कम होते जाएंगे यानी व्यर्थ से मुक्त और समर्थ भी बहुत कम। वैसे समर्थ संकल्प कम ही होते हैं, पर जब समर्थ संकल्पों का आनंद आने लगता है तो वो और कम हो जाते हैं। जिनके संकल्प बहुत कम रहने लगेंगे उन्हें संकल्पों की सिद्धि। और बाबा के महावाक्य था, जो 50 शब्दों का काम 5 शब्द बोलकर पूरा करेंगे उन्हें वाचा की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। दोनों को एक में कर दें तो जो लंबा काल योग युक्त रहेंगे। और योग को कल बाबा ने बहुत अच्छी बातें कही, याद करना तुम्हारा वैसे ही नेचुरल है जैसे कर्म इंद्रियों का कर्म करना। अब ये याद किसी मनुष्य की भी है ना, नेचुरल होती है ना। माँ बच्चे को याद करती है तो कुछ थोड़ा ही, बच्चा माँ को याद करता है कुछ विधि थोड़ा ही अपनाई जाती है, ये बिल्कुल नेचुरल है। साकार में बाबा ऐसे कहते थे, कोई बाबा को कहते थे बाबा, सामने ही बाबा को कहते थे मैं आपको भूल जाता हूँ। बाबा हंसते थे कि सामने तो बैठा है, भूल कैसे गए हो। तो एक याद वो, और दूसरी योग बुद्धि का जिसमें मन भटकता है। तो कल बाबा ने एक दूसरी गुह्य बात कही जिस पे सभी को ध्यान देना है। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो इस बात को पकड़ते चलें, अधिकार से याद करो। अधिकार, एक तो हमारा बाबा पर अधिकार है, पर इसमें हमें सबसे अच्छे अनुभव होंगे, मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ, मालिक हूँ। ये गुड फीलिंग सभी अपने को देते चलें, बढ़ाते चलें, मैं मन बुद्धि की मालिक हूँ। ज्ञान से तो हम जानते ही हैं हम मालिक हैं, हैं या नहीं? किसकी है मन बुद्धि? हमारी है। संस्कार किसके हैं? हमारे हैं। देह किसकी है? हमारी है। हम इनके मालिक हैं। इस फीलिंग को बहुत बढ़ाएंगे। मैं राजा हूँ, मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, तो मन बुद्धि को मेरी बात माननी है। मेरे कमांड्स, मेरे आदेश मन बुद्धि को स्वीकार करने ही हैं। ध्यान दें आप, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? प्रैक्टिस करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी, ये मेरा सिंहासन है प्रकृति, मैं राजा हूँ, मन बुद्धि को, कर्मेंद्रियों को, इस देह को, संस्कारों को मेरी बात माननी ही है। पसंद है ना? बढ़ाए ये फीलिंग, ये फीलिंग बढ़ानी है। तो जिसके संस्कार उसको कष्ट दे रहे हैं, मैं कुछ माताओं के चेहरे देख रहा हूँ, वो अपने संस्कारों से परेशान है और वो दोष दूसरे को देती होंगी, इसने मुझे दुखी किया हुआ है, बहू ने दुखी कर दिया। पर ऐसा नहीं है माताओं, दुखी मनुष्य को कौन करता है? अपना संस्कार। एक व्यक्ति बैठे बैठे दुखी हो रहा है, मेरे पास आते हैं लोग, यज्ञ में ये सब क्या क्या हो रहा है, ये लोग ऐसा क्यों क्यों कर रहे हैं, बैठे बैठे अपने घर में एकांत में आनंद पूर्वक बैठे हैं और परेशान हैं। खाना अच्छा मिल रहा, पैसा बहुत है, परिवार भी अच्छा है, लेकिन उनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं। सभी अटेंशन दें, चित्त को शांत करना है। मैं इस बारे में लोगों को एक ही बात कहता हूँ, अपने को भी कह दी है और मेरी तो वो पक्की हो गई कि जो मालिक है, कौन है मालिक? शिव बाबा, यज्ञ का मालिक, संसार को बदलने का मालिक वही। अब वो तो निश्चिंत है ऊपर, और ये नीचे वाले परेशान क्यों? जो केवल निमित्त हैं वो परेशान हो रहे हैं, और जो मालिक है वो आनंदित है। वाह क्या सुंदर ड्रामा चल रहा है, और ये परेशान हो रहे कैसा खराब ड्रामा चल रहा है। क्यों अंतर कर दिया? ये मिलाएं इस दोनों को, अंतर को भरें। जब मालिक निश्चिंत है तो हमें चिंता क्यों? हल्के हो जाएं, साक्षी करें, चित्त शांत होगा, मन खुशियों से भरेगा। बहुत बड़ी चीज है अंतर मन को खुशियों से भरपूर रखना। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग ऐसे हैं ब्राह्मणों में भी जो बिना कारण ही खुश नहीं हैं, बिना कारण। कारण हो तो अलग बात है, भाई ये कारण है, दिखाई दे रहा है, खुशी चली जाती है मनुष्य की, लेकिन कोई कारण नहीं है। इसलिए एक चीज पर और मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, पास्ट का प्रभाव हर आत्मा पर गहरा होता जा रहा है, सब उससे स्वयं को मुक्त करें और इसको समझ भी लें गहराई से। पास्ट का प्रभाव, एक है इस जन्म का पास्ट, कुछ जीवन में घटित हो गया है, किसी ने सताया है बहुत, जीवन बहुत समस्याओं से गुजरा है, या शारीरिक कष्ट बहुत हुए हैं, या जीवन में असफलता बहुत हुई है, उसका प्रभाव, और एक पिछले हजारों साल का। लेकिन हम पर प्रभाव किसका होना चाहिए? किसका? बाबा से भी। और एक चीज, हमारे आदि काल का, वो भी तो हमारा पास्ट है ना, वो जो हमारा 2500 साल का पास्ट है, बहुत सुंदर, उसका प्रभाव हम पर आ जाए, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने उस स्वरूप को याद रखेंगे, नशे में आ जाए मैं ये थी, सामने खड़ा हो जाए हमारा देव स्वरूप। देव स्वरूप तो सबका है ना, केवल ब्रह्मा बाबा का नहीं, सामने वो आ जाए तो उसका जो कुछ अंदर भरा हुआ है आत्मा में, वो इमर्ज हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और ये जो बुरा प्रभाव हजारों साल का पड़ा है या इस जन्म का पड़ा है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा? होगा नहीं, हो रहा है, शुरू हो गया 3-4 साल से, कि बहुत लोगों के मन पर पास्ट इसका बुरा प्रभाव ऐसा हो गया है कि या तो वो उन्हें सोने नहीं दे रहा है, या चिड़चिड़ा बनाया हुआ है, या अंदर परेशान किए हुए है, उनका सुख जाता रहा है। ये बहुतों के साथ हो रहा है और अगले 5 साल इसके लिए बहुत भयानक होंगे। 21 दिसंबर तो बीत गया ना, मुझे पता नहीं लोगों की क्या कमेंट्स आए हैं उसके बाद अमेरिका में। अमेरिका नहीं ज्यादा किया था ना, मैं तो देख नहीं पाता, टीवी आदि अखबार भी नहीं पढ़े कई दिन से, क्या कह रहे हैं वहां के लोग। हुआ तो कुछ भी नहीं, मुझे था कि कोई छोटी मोटी घटना तो हो जाएगी, अर्थक्वेक तो आ जाएगी, वो भी नहीं आई। और बाबा ने तो कह दिया जो डेट लोग देंगे उस पर कुछ नहीं होगा, होगा तब जब निश्चिंत होके सब सोए होंगे कि कुछ नहीं होना है। भगवान वाच ही सत्य है ना, मनुष्यों के वाच तो सत्य होते ही नहीं, वैज्ञानिकों की भी खोज है। इसमें विज्ञान भी जुड़ा हुआ था ना बहुत, लेकिन विज्ञान भी फेल हुआ, तो विज्ञान भी कोई संपूर्ण सत्य नहीं होता। आज का विज्ञान कल का अज्ञान भी बन जाता है, ये वैज्ञानिक भी जानते हैं। आज जो उन्होंने खोज की है कल वो नया वैज्ञानिक आके उसको झूठा सिद्ध कर सकता है, नई खोज दे सकता है। इसलिए संपूर्ण सत्य कौन है? एक बाबा, उसे ही परम सत्य भक्ति में भी कहा जाता है। तो किसी की बात पे विश्वास करके अपने को कभी डिस्टर्ब नहीं करना है। बाबा ने जो कुछ हमें कहा वही अंतिम सत्य है, परम सत्य है। मैं मालिक हूँ, रोज प्रैक्टिस करनी है, कम से कम एक बार सवेरे अच्छी तरह। ये एक बार की प्रैक्टिस भी बहुत काम की है। और अगर आप इसको धुन बना दो अपनी 7 दिन के लिए केवल, कि 10 बार रोज कर लेना है, या हर घंटे में 1 बार रोज कर लेना है, और कैसे करना है अपने स्वरूप को देखेंगे भ्रकुटि में। मैं चमकती हुई मणि हूँ, राजा हूँ, ये संकल्प देंगे। ये भ्रकुटि मेरा सिंहासन है, मैं मन बुद्धि की मालिक हूँ। बहुत गुड फीलिंग, मालिक हूँ। फिर अपने मन को संकल्प देंगे शांत हो जाओ, श्रेष्ठ संकल्पों का आनंद लो, सदा प्रसन्न रहो, संतुष्ट हो जाओ। तुमने भटक भटक के देख लिया है तुम्हें क्या मिला, अशांत हो गए हो, अब शांत। ऐसे बात करेंगे, फिर बुद्धि से बात करेंगे, तुम स्वच्छ हो जाओ, तुम एक महान आत्मा की बुद्धि हो, तुम एक श्रेष्ठ योगी की बुद्धि हो, तुम्हें स्वयं बुद्धि दाता से वरदान प्राप्त है, तुम दिव्य बुद्धि हो, दिव्य हो जाओ। जो भी गंदगी तुमने अपने अंदर भरी है उसे निकाल कर स्वच्छ हो जाओ, अब एकाग्र हो जाओ, परमात्म स्वरूप पर स्थिर हो जाओ और परमानंद का अनुभव करो। बात करेंगे ऐसे, एक बार भी कर लिया तो उसका इफेक्ट बहुत जबरदस्त आएगा हमारी स्मृतियों पर। और अगर आप 7 दिन धुन लगाना चाहें घंटे में 1 बार, तो सारा योग, सारी स्मृतियां, प्योरिटी, शक्तियां सब बहुत आगे बढ़ जाएंगी। ये बाबा हम सबको बहुत कहना चाह रहे हैं। देखो ये 75 की मुरली है, मुझे याद है ये मुरली यहीं चली है इसी हॉल में। बिल्कुल बाबा पक्का कराते थे तुम मालिक हो फीलिंग में, तब लंबी लंबी मुरली नहीं चलती थी। आज भी आपने देखा थोड़ी सी थी ना, 1 घंटा ही चलती थी, बहुत स्लोली स्लोली फीलिंग देते हुए बाबा जैसे कमेंट्री कराते थे तुम मालिक हो। दूसरी चीज पे मैं आपका ध्यान खिंचाऊं, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उन सबके लिए है, लेकिन है सबके लिए ही। अब अपने अंदर इस फीलिंग को बहुत बढ़ाओ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मेरा हर कर्म, मेरा हर संकल्प, मेरा योग, मेरी प्योरिटी, मेरी शक्तियां सब विश्व कल्याण के लिए, मेरी लाइट, मेरी माइट, मेरी भावनाएं, मेरी शुभ भावनाएं सब विश्व कल्याण करें, ऐसा हमें अपने को ऊंचा उठा देना है। तो अब हमारा जीवन विश्व कल्याण में समर्पित, विश्व कल्याण में ही है सबका समर्पित, लेकिन ऐसी ऊंची दृष्टि अब पैदा करें। माताओं को पसंद है, बच्चों का कल्याण तो कर लिया, हो गया ना, बच्चों के काम भी आए, संबंधियों के काम भी आए, अब विश्व के काम आ जाएं। निष्काम, बिल्कुल निष्काम भाव से विश्व के काम। इसलिए भी नहीं कि हमें विश्व महाराजन बनना है, पर इसलिए कि हमें विश्व की समस्त आत्माओं को सुख देना है, हमें उनकी समस्याएं समाप्त करने में सहयोग देना है, हमें उनके चित्त को खुशियों से आनंदों से भरपूर करना है। संसार में त्राही त्राही का समय आ रहा है, बाबा ने सब बोला हुआ है, और आ रहा है, दिख रहा है, बढ़ता जा रहा है। आ रहा है माना अब नहीं, ऐसा नहीं, तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर चीज फेल होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा समय जल्दी आ जाएगा कि सारे डॉक्टर्स कहेंगे दवाई काम नहीं कर रही है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो कर लिया जो करना था, क्योंकि अंदर से विकर्मों का फोर्स इतना होगा कि दवाइयां सब निष्फल हो जाएंगी। तो हमें अपने को तैयार करना है विश्व का कल्याण करने के लिए। बाबा का संदेश तो फटाफट पहुंच जाने वाला है। ऐसा समय आएगा रोज एक एक लाख ब्राह्मण बनेंगे, एक एक लाख रोज आ रहा है वो समय। वो कुछ हमें नहीं करना हो तो टीवी चैनल कर देंगे सारे काम, हमें करना होगा एक स्थान पे बैठ के सबका कल्याण। टीवी चैनल संदेश दे देंगे ना, आत्माओं को ब्राह्मण संप्रदाय में ले आएंगे, लेकिन आगे का काम तो टीवी नहीं कर सकती ना, टीवी योगी तो नहीं बना सकती, उन्हें पावन तो नहीं बना सकती, उनके दुख तो दूर नहीं कर सकती। वो काम करेंगे हम चेतन टीवी चैनल्स। हमारे मस्तक क्या बन जाएंगे, टीवी स्क्रीन, यही दिखेंगे सब, इधर चमकेगा। टीवी स्क्रीन में लाइट न हो तो कुछ दिखेगा, यहाँ भी जितनी लाइट होगी यहाँ सब कुछ दिखेगा लोगों को। लाइट बढ़ा दें अपनी, मस्तक पे लाइट बढ़ा दें, ये मस्तक स्क्रीन बन जाएगा। ये बाबा ने बताया हुए सब। 69 की आप मुरली सुनो, अब मुझे ये भूलता है कि वो मुरलियों में था या संदेशों में था। उन दिनों संदेश भी बहुत आते थे बाबा के, हर गुरुवार को आता था, और हमें एक और अच्छा फायदा था जो हमें ही था केवल दो चार लोगों को, कि रोज दो टाइम बाबा को भोग लगता था हिस्ट्री हॉल में, कभी बाबा के कमरे में। तो हमें इतना रस हो गया था कि हम दोनों टाइम भोग पे जाके बैठते थे और भोग लगाती थी संदेशी बहने, और रोज एक छोटा सा दो मिनट का बाबा संदेश देते थे। वो बहुत सुंदर गाइडलाइन थी, मुझे उनकी बहुत बातें याद रहती हैं, और बहुत बातों ने पूरा योग अभ्यास के लिए गाइड किया था। हम पांच सात ही होते थे बस, किचन वाले ज्यादा होते थे, हम सब ने कर लिया था कि भोग पे जरूर हम चलेंगे, रोज बाबा का अच्छा अच्छा संदेश आता है। कैलाश बहन है जो अभी गांधीनगर में है, वो मधुबन में ही थी, किचन में ही थी, वही रोज भोग लगाती थी तो अच्छे अच्छे संदेश आते थे। तो हम सभी अपने संकल्पों की स्पीड को धीमा करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात से शुरू करता हूं। नॉर्मल रूप से मनुष्य के मन में एक मिनट में 20-25 संकल्प उठते हैं। एक दिन में कोई कहते हैं मनोवैज्ञानिक 30,000, कोई 40,000, कोई 50,000 संकल्प एक दिन में, कोई सोच भी नहीं सकता। हम सोचते हैं इतना, हम सोचते हैं, जो ज्यादा सोचते हैं उनके 50,000 हो जाते हैं, जो हम सब जैसे हैं 30,000 हो जाते हैं। हर मिनट में 25 समझ लें, 20 से 25 विचार, इसको कम करना 15-10। सोचो सतयुग में हम जब देवता थे, हमारे मन में एक मिनट में कितने विचार उठते होंगे, बोलो। नहीं उठते ही नहीं, ये नहीं उठते ही नहीं, ये नहीं विचार उठते ही थे और देवताओं के मन में भी विचार चलते थे ना, वहाँ कोई समस्या नहीं थी, इसलिए स्पीड 25 थॉट तो नहीं थी, 10 के आसपास, 8-10। इसलिए उनकी शक्तियां बहुत धीमे यूज हुई, कलाएं धीमे कम हुई। ये कला माना शक्ति जो संकल्पों में यूज होती है। पाप कर्म तो वहाँ है ही नहीं, केवल संकल्प में, बोल भी ज्यादा नहीं है, तो 8-10 संकल्प में धीरे धीरे एनर्जी यूज हुई। हम अपना जीवन ऐसा बना दें कैसा, कि हमारे मन में भी नॉर्मल लाइफ में 8-10 संकल्प ही उठे हर मिनट। और ये कैसे होगा, योग तो सारा दिन नहीं होगा ना। नहीं, इसमें टेंशन की बात नहीं, सारा दिन कहाँ टेंशन देंगे संकल्पों पे, फिर तो और कुछ कर ही ना पाए हम। स्वमान का अभ्यास, एक बार आप नशे में आ गए, आधा घंटा संकल्पों की स्पीड धीमी हो गई, जिनको अच्छा अभ्यास है। नहीं तो एक घंटे में ही स्वमान का अभ्यास 10 बार कर ले, केवल याद कर ले। मान लो हमारा स्वमान है, मैं विजयी रतन हूँ, 10 बार याद कर ले, मैं विजयी रतन हूँ। एक साथ 10 बार कर ले, न याद रहता हो, नहीं तो पूरे घंटे में धीरे धीरे करते रहें, संकल्पों की स्पीड आप ही धीमी हो जाएगी और तब वो योग की स्थिति सहज बनेगी जो बाबा ने कहा, एक संकल्प में स्थित होना और संकल्प सिद्ध होने लगेंगे। जो बाबा ने कहा, हमें संकल्प उठेंगे ही वो, हम बोलेंगे ही वो जो ड्रामा में होना है। ड्रामा और हम पैरेलल हो गए, समानांतर दोनों साथ साथ चलने लगे। हम वही सोच रहे जो ड्रामा में है, हम वही बोल रहे जो ड्रामा में होना है, समानता आ गई, ये हमारी संपूर्णता की समीपता होगी। बाबा ने कहा, संगठन सारा अगर एक संकल्प में स्थित हो जाए तो क्या होगा, बहुत जबरदस्त वाइब्रेशंस सारे संसार में फैलेंगे। इसलिए कमेंट्री से योग करना, अगर एक संकल्प यहाँ से दे दिया जाए और सब यहाँ बैठे भाई बहने उसी स्थिति में स्थित हो जाएं, तो 5 मिनट में भी बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैलेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में ये कहा है, मैं ये महावाक्य क्लासेज में सुनाता रहता हूँ, हे अर्जुन, वो योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, संकल्प नहीं है, ऐसा योगी इस संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि जितने कम संकल्प हमारे मन में होते हैं, उतने ही पावरफुल वाइब्रेशन हमसे चारों ओर फैलते हैं, हम लाइट हाउस माइट हाउस बन जाते हैं। और सोचो, 1000 लोग एक साथ एक संकल्प में स्थित होके बैठ जाएं, मान लो संकल्प है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और बुद्धि स्थित है सर्वशक्तिवान पर, और हम फील कर रहे हैं उसकी शक्तियां मुझ में समा रही हैं, तो चारों ओर शक्तियों के वाइब्रेशंस इतने जबरदस्त फैलेंगे कि अनेक निर्बल आत्माएं पावरफुल बन जाएंगी, माया से हारी हुई आत्माएं विजयी रतन बन जाएंगी, समस्याओं से निराश आत्माएं समस्याओं को हल करने लगेंगी। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ, इस संकल्प में स्थित होकर हम बाबा से पवित्र वाइब्रेशंस लें, चारों ओर फैलेंगे, प्रकृति पावन बनती जाएगी, वायुमंडल पावन बन जाएगा। तो ये अभ्यास योग के समय करना है, एक संकल्प में स्थित होना। बाबा ने एटम बम का उदाहरण दिया, एटम बम और आत्मिक बम। एटम बम छूटता है तो उसका जो गंदगी फैलती है ना, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं उसको, तो उससे देखो जापान में अब तक भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। इतने साल बीत गए, 1945 में हुआ था ना, कितने साल बीत गए। तो ऐसे ही आत्मिक फीलिंग, ये संगठन के पावरफुल वाइब्रेशंस प्रकृति पर, संसार पर लंबे काल का गहरा प्रभाव डाल देते हैं। तो हम सभी बोल को कम करेंगे। बोल सहज है, बोल को कम करना माताएं क्या कहेंगी? सहज है, यहाँ तो कम होता है। हम देखते हैं माताएं चलती है ना, जब अपने कमरों से योग में जाती हैं सवेरे, तो भी बात करते जाएंगी, और जब योग करके वापस कमरे में जाएंगी तो भी बात करते जाएंगी। तो मैं सोचता हूँ इनका योग लगा भी है या नहीं, बाबा से बातें हुई नहीं, नहीं तो आपस में ना करती। चुप रहना किसके लिए संभव है? नहीं, माताओं के। आपने तो वरदान दे दिया माताओं को। चुप रहना, चुप वही रह सकते हैं जिनके अंदर में चिंतन बहुत अच्छा चलता हो, जिन्हें ईश्वरीय अनुभूतियां होती रहती हों। अब माताओं का क्या है, कोई बात अगर सुन ली तो वो हजम नहीं होती जब तक दो चार को ना सुना दे, फिर हल्के हो जाते हैं, काम पूरा हो गया भाई। लेकिन हमें उसे समा लेना, हजम कर देना, ये होगा योग की शक्ति से। मैं सभी को देखा, अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी समझदार माताएं भी वो वर्णन जरूर करेंगी बहुत अच्छा अच्छा, चाहे वो खराब बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन वाचा का कम प्रयोग करना ये वाचा की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। हमारे यज्ञ में तो वो लहर खत्म हो गई ना, नहीं तो जब तक दीदी थी ना मनमोहिनी, मंडे और गुरुवार मौन चलता था, हम लोगों ने 40-40 दिन के मौन रखे, 7-7 दिन के मौन तो बहुत रखे, और गुरुवार और सोमवार का तो पक्का था, उसका बहुत इफेक्ट होता था। मुझे याद रहता है यही मधुबन में दादी कोई मुरली सुना रही थी, बाबा की अव्यक्त मुरली ऐसे ही सुनाई किसी दिन, तो उसमें मौन की बात थी, तो सब ने तय किया कि एक मास मौन रखा जाए, ये बहुत पहले की बात है। शुरू हो गया, अगले दिन सोमवार था, सोमवार को पहला दिन मौन हुआ सुशील, मधुबन ऐसा लगे परम धाम। दो टाइम भोजन कर दिया गया था, सवेरे 10:30 खाएंगे, शाम को 6:30। लोगों का ये अनुभव था कि कुछ काम नहीं रहा करने को, जो कहते थे बहुत बिजी हैं सेवा में, टाइम नहीं मिलता है, वो कहते काम ही नहीं है, सेवा फटाफट पूरी हो गई। उन्हें समझ में आया कि बिजी मनुष्य है सेवाओं में नहीं, व्यर्थ में, व्यर्थ के बोल में। वो लोग भी चुप थे जिन्होंने जिंदगी में कभी चुप रहना नहीं सीखा था, जो कहते थे चुप रहोगे मुंह में बदबू हो जाएगी। हमारे पास भी एक थे, वो कहते थे चुप, मैं बहुत चुप रहता था ना, बदबू हो जाएगी मुंह में। दूसरा दिन आया, अब लोगों जो चुप नहीं रहते उन्हें भारी लगने लगा। दूसरा दिन मधुबन सुख संवतन बना। तीसरा दिन आया, बहुत अच्छा रहा वैसे ही, ये 5 दिन चला। 6 दिन कई लोग बोर हो गए, उन्होंने कहा हम नहीं रखेंगे अब मौन, बोलना शुरू कर दिया। लेकिन 5 दिन चला, और मुझे पहला दिन याद रहता है, बिल्कुल परम धाम। तो सचमुच जिसको इस संसार का कल्याण करना है उसे मौन की शक्ति भी चाहिए और मन की स्पीड को भी कम करना पड़ेगा, दोनों जुड़े हुए हैं। मुक्का मौन हम रखते हैं तो मन भी किसी न किसी तरह से कंट्रोल में आने लगता है, थोड़ा भी हम ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाबा की मुरली में कई गुह्य बातें थी, कल सभी उसकी बार बार स्टडी करेंगे, जरा बहुत अच्छी पालना है ये। टीचर्स बहनों से जो बात की वो भी हम सबसे ही है, टीचर्स भी तो आत्माएं है ना, हमारे ही साथी हैं, वो भी हम सबको ध्यान देना। एक और बहुत अच्छी बात श्रेष्ठ पुरुषार्थियों के लिए है, वो भी, अगर बाबा की याद एक रस नहीं रहती तो जरूर कहीं ना कहीं आत्मा कर्मेंद्रियों के भोग भोगने में, रस भोगने में लगी हुई है। बड़ा सूक्ष्म कनेक्शन है, कर्मेंद्रियों के रसों से जो मुक्त हो वही ज्यादा समय योग युक्त रह सकते हैं। इसलिए जो भक्ति में संन्यास में लोग करते रहे, भोजन छोड़ो, मौन रखो, सुनना छोड़ो, भोजन जैसा मिला उसको मिलाया और खाया ताकि जीव का रस खींचे ही नहीं, सब रसों पे उन्होंने भी ध्यान दिया जो सिद्ध पुरुष हुए, सबकी बात हम नहीं करते, सिद्ध पुरुष हुए हैं भक्ति में भी जिन्होंने मनुष्यों को सुख दिया, जो ऐसा ही कहें भक्ति मार्ग में भी भगवान का वरदान लेकर जन्मे और भक्ति को भी जिन्होंने बल दिया, श्रद्धा उत्पन्न हुई और बहुत कुछ अच्छा हुआ, और हमेशा सिद्धियों के सामने ही लोग झुके। आपने सुना हो रैदास, सुना है, हरिजन था वो, तो काशी में जो पंडित हैं वो उसके विरोधी थे और लोग उसकी महिमा करते थे। आखिर दोनों को चैलेंज हुआ, दोनों के शास्त्रार्थ होगा और जो हारेगा उसे गधे पे उल्टा बैठा के सारी काशी में घुमाया जाएगा। अब रैदास जी तो अहंकारी नहीं थे और पंडित लोग होते थे अहंकारी, अपनी विद्वता का उन्हें बड़ा अभिमान, आखिर पंडित हार गए। अब क्या करें, रैदास ने उन्हें क्षमा कर दिया कि नहीं, अब विद्वान हो, देश की श्यान हो, आपको ये सजा नहीं दी जाएगी, आपको सजा से मुक्त किया जाए। यहाँ उसकी और मान्यता हो गई, जो क्षमा कर दे दूसरों को ऐसी स्थिति में, उस वो और महान हो गया ना। तो महान आत्माएं कोई जाति वाति से संबंध नहीं है, मान्यताएं तो अंदर की हैं। ये देखा गया भक्ति में, कबीर भी हुए, लास्ट में चमत्कार होने लगे। उसी समय एक बहुत प्रसिद्ध सन्यासी हुए भारत में, स्वामी रामानंद, बहुत प्रसिद्ध हुए, सिद्ध पुरुष। ये सब ये 500 साल पहले के एक साथ के सन्यासी हैं सब। तो एक मुस्लिम सुल्तान ने हिंदुओं के लिए 16 कड़े कानून बना दिए, दंड हिंदुओं को, हिंदू बनना जैसे अपराध है। हिंदुओं के बहुत सारे लोग स्वामी रामानंद के पास आए, ये भाई क्या कर दिया इन्होंने, हिंदू धर्म को ये मुस्लिम्स नष्ट करना चाहते हैं। उसने कुछ कुछ सुझाव दिए, लोग विरोधी हो गए। तो मुस्लिमों का एक बड़ा समुदाय, बहुत सारे लोग स्वामी रामानंद को और इन सब को मानने के लिए आए। गंगा के किनारे उसका आश्रम था, छोटा सा कुटिया। उसके साथियों ने बता दिया कि ये मुस्लिम्स आ रहे हैं मारने के लिए। स्वामी रामानंद बाहर निकले, उन सबको दूर से देखा होंगे, दूर थोड़ी बहुत दूर, अपना शंख बजा दिया और शंख बजाते वो सारे मूर्छित होके गिर गए, पड़े रहे। आवाज फैल गई, सुल्तान तक आवाज पहुंची, वहीं का कोई सुल्तान था आसपास का। सुल्तान बहुत बुद्धिमान था, वो नहीं मानता था ये मुसलमानों की बात। उन्होंने उसको बहुत मना किया था कि नहीं, ये ठीक नहीं है, सबको समान रूप से जीने का अधिकार है। वो आया स्वामी रामानंद के पास, क्षमा याचना की कि इनके बहुत दबाव में मैंने कानून बनाया था, मैं कानून वापस लेता हूँ, आप इन सबको वापस जिंदा कर दीजिए। फिर वो खड़ा हुआ, शंख बजाया, सब उठ के भाग गए, ऐसे भागे कि दोबारा उधर को देखा नहीं। तो ये मुझे याद आता है बाबा की बातें कि भारत बाबा की जन्मभूमि है और देवी देवता धर्म उसका अपना स्थापित किया हुआ धर्म है। तो जब जब हिंदू धर्म को भी लोगों ने इस तरह नष्ट करने की कोशिश की, तो रामानुसार कहो या बाबा ने ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ रखा है, चाहे राजा के रूप में चाहे धर्म नेता के रूप में, जो हिंदू धर्म की सुरक्षा करता रहा। और वो कौन होंगे, कौन होंगे, वो हम में से ही कोई हीरो एक्टर हैं। इसलिए यहाँ हम अपने सिद्धि स्वरूप को प्रत्यक्ष करें। ये साधनाएं केवल वर्तमान की नहीं, ये अनेक जन्म इनका प्रभाव हमारे साथ चलेगा, बहुत साथ चलने वाला है। धर्म को भी हमें बल देना होगा अनेक जन्म, और भारत पर जब जब मुसीबत आएगी, जब कोई भारत को नष्ट करना चाहेगा, तो हम में से कोई हीरो एक्टर भारत को सुरक्षित करेगा। आप में से बहुतों ने इतिहास के बारे में नहीं ज्यादा जाना होगा, द्वापर युग से भारत के इतिहास को अगर देखें पृथ्वीराज चौहान तक, जब तक मुस्लिम राज भारत में स्थापित हुआ, इसको हुए होंगे 1500-1600 साल तक, 1700 साल, 800 साल से भारत गुलाम रहा, तो 1700 साल में भारत पे अनेकों ने आक्रमण किए और भारत की सत्ता हथिया भी ली, पहले भी अंग्रेजों से पहले, लेकिन कोई न कोई भारत में ऐसा बहादुर व्यक्ति पैदा हुआ जिसने उन्हें 50 साल से ज्यादा यहाँ रहने नहीं दिया और उन्हें निकाल दिया। तो वो सब हीरो एक्टर यहाँ के ब्राह्मण कुल के ही हीरो एक्टर हैं, जिन्होंने भारत को बचाया है जन्म जन्म विदेशी आक्रमणों से, विदेशी अत्याचारों से। और विदेशियों का लक्ष्य होता था भारत की संपदा को लूटना, यहाँ की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज को जला देना। 4 विश्वविद्यालय थे भारत में, उनकी जो लाइब्रेरी होती थी ना, पुस्तकालय, जिसमें लोग हाथ से लिख के ग्रंथ रख देते थे, तब प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं थी। तो ये मुस्लिम आक्रमणकारी और जो बाहर के आक्रमणकारी होते थे, यवन उन्हें उन दिनों कहते थे, वो सब लाइब्रेरी जला देते थे ताकि भारत का जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाए। लेकिन किताबों से ही तो नष्ट हो सकता है ना, जिसने लिखा उससे कैसे नष्ट होगा, वो फिर लिखते थे, लिखना हाथ से होता था। तो हम सभी बोल की शक्ति और संकल्प की शक्ति को बचाएं, इन दोनों को अपने खजाने मान लें। बोल की शक्ति भी खजाना है ना, जिन्होंने अपनी बोल की शक्ति को बचाया होगा, एक तो सिद्धि की बात है, लेकिन इससे बड़ी बात है उनके बोल दूसरों को वरदान देंगे, ये इससे बड़ी बात है। और भक्ति में भी उनकी मूर्तियों के द्वारा दूसरों को सिद्धियां मिला करेंगी। ये भक्ति की सिद्धि भी बहुत कल्याणकारी थी, जन कल्याण के लिए थी। आज लोगों ने इनको तांत्रिक रूप देकर पैसा कमाने का, दूसरों को कष्ट देने का आधार बना लिया। ये पाप का काम है, क्योंकि पापी हो गए हैं सब लोग, तो वो शक्तियों का यूज पाप कर्म के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम सब अपनी शक्तियों का, अपनी सिद्धियों का प्रयोग विश्व कल्याण के लिए करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं। उसके रिटर्न में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, न मान न पैसा, दो ही चीजें माया बन रही ना, पैसा या मान सम्मान। दोनों के बिना हम विश्व कल्याण में अपनी शक्तियों को लगाएंगे और ध्यान देंगे, कोई भी रस हमें योग के रस से मुक्त न कर रहा हो। खा ले हम अच्छा क्या होगा, बस यहाँ तक गया और खत्म। जीभ के बाद क्या खाया, कुछ नहीं। पहन के देख ले बहुत अच्छा, जूते पहन ले बहुत अच्छे अच्छे, क्या होगा, एक दो दिन लगेगा बहुत अच्छे जूते पहने, और अगर देख लिया कि दूसरे के मेरे से भी अच्छे, तो उसका भी सूख गया। इसलिए ये जो कर्मेंद्रियों के भोग हैं, ये आत्मा को तृप्त नहीं करते हैं, परेशान करते हैं। हमें तो योग का रस लेना है, बाबा से ऐसा रस अपने में भरना है कि हम संसार की अनेक नीरस आत्माओं के जीवन में रस भर सकें, ऐसे विश्व कल्याण के काम में हम काम आ जाएं। माताएं भी अपने को तैयार करो, केवल बच्चों में उलझ के न रह जाओ। अब आपने बच्चे बड़े कर दिए, उनकी शादियां करा दी, काम पूरा हो गया। अब फिर पोतरे हैं, उनकी चिंता, इनकी भी शादी करानी है, किस किस की चिंता करोगे। माताएं थोड़ा सा निकल जाओ, अब निकल जाओ माना मन से बाहर आ जाओ, कहीं अपने को लिप्त न करो। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, सब अपना अपना भाग्य लेकर ही आए हैं। कल हम नहीं होंगे तो भी तो वो जिएंगे ना, इसलिए अब ईश्वरीय कमाई में अपने जीवन को सफल करना है और ऐसे वाइब्रेशन संसार में फैलाने हैं कि संसार की आत्माओं का कल्याण हो, क्योंकि वो सब हमारे हैं, हम पूर्वज हैं ना उनके। अगर हमारे बच्चे न सोते हों रात को तो माँ सोएगी, हम पूर्वज हैं। हमारी वंशावली अगर दुखी होगी तो हम चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। इसलिए विश्व कल्याण की वृत्ति को और मैं मालिक हूँ, इस व्यक्ति को बहुत बढ़ाएंगे। ओम चंद।
प्रभु का ध्यान।